सतत केवल ज्ञान का। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज आज कहां से शुरू करूं। हमेशा की तरह, हर रविवार की तरह आज ये नहीं कह पा रहा हूं कि एक दिनार हमारे पास है जिसमें हम बैठ करके अपने ही जीवन के बारे में विचार करेंगे। आज का दिन मैं आपका दिन मानता हूं, पर इसके बावजूद भी बहुत थोड़े से समय में आज अपन ये मान करके कि इतना ही समय हमें मिला है अपने ही जीवन के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। मुझे लगता है कि पिछले दिनों दो रविवार को मैंने जो 50-50 मिनट ले लिए हैं 30 की जगह, उनको आज चुकता करने का मौका भी मिल गया है। जो लोग बहुत मन बना के एक हफ्ते के बाद आए होंगे, वे इन 10 मिनटों में को एलाबोरेट करके 50 बना लें, ऐसा मान करके अपन शुरुआत करते हैं। देखा होगा अपन ने, अपने जीवन में देख रहे होंगे कि एक आंदोलन ऐसा है जो धार्मिक लोगों का आंदोलन है, जिसमें धर्म के एक निर्धारित मापदंड में धर्म की क्रियाओं को दोहराने का हम प्रयास करते हैं, और एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कंप्यूटर हैं, स्वचालित यंत्र हैं, और वहाँ वे सब लोग इसमें मशगूल हैं जिन्हें और किसी दीन दुनिया की चिंता और खबर भी नहीं है। पूजा पाठ में और एक निश्चित मापदंड में जो क्रियाकलाप हैं, जो आचरण की निर्धारित मान्यताएं हैं, उनमें भी लोग व्यस्त इतने हैं कि दीन दुनिया की उन्हें भी चिंता नहीं है। दो ही आंदोलन और दोनों अधूरे अधूरे आंदोलन। एक ऐसी शिक्षा हमें मिल रही है जो हमें इंजीनियर बना देती है, जो हमें डॉक्टर बना देती है, जो हमें व्यवसायी बना देती है। एक ऐसी शिक्षा हमारे पास है, लेकिन उस भौतिक समृद्धि और भौतिक समानता देने वाली शिक्षा के बावजूद भी कहीं कुछ के भीतर हमारे ऐसा नहीं लगता कि शेष रह गया हो जानने के लिए। इस भौतिक समानता और भौतिक समृद्धि के बावजूद भी कहीं कोई एक रिक्तता और एक खालीपन हमारे बीच आज भी है, और सारे धार्मिक अनुष्ठान 24 घंटे व्यवस्थित ढंग से दोहरा लेने के बाद भी मैं कहता हूं कि अधिकांश लोगों के बीच फिर भी एक खालीपन, एक अशांति फिर भी है। उधर कंप्यूटर मिले फिर भी हम ईर्ष्यालु, फिर भी हम झगड़ालु, उतने जितने कंप्यूटर नहीं थे पहले तब भी। यहां मंदिर मिले, पूजा पाठ की प्रक्रिया मिली, फिर भी हम उतने ईर्ष्यालु, उतने ही झगड़ालु जितने की पहले मंदिर नहीं थे तब। आखिर दोनों ने हमें क्या दिया, या कि दोनों अपनी जगह सही सही हैं, हम अपनी कोई आयत खो बैठे। जहां एक तरफ एक स्वचालित मशीनों का ढेर है, वहीं दूसरी तरफ क्रियाकांड में यंत्र की भांति लगे हुए लोग भी हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वे दोनों एक दूसरे से एक दूसरे की बातें लें? क्या कला संगीत विज्ञान ले पाएगा? क्या जीवंतता और जीवंतता के साथ यांत्रिकता का विमोचन क्या धार्मिक लोग कर पाएंगे? हमारा प्रयास इन क्षणों में पिछले बैठ करके यही था। जब हम धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं तब ऐसा ना हो कि यंत्र से प्रभावित होकर हम यांत्रिक हो जाएं, हमारी जीवंतता खो जाए, हमारा संगीत खो जाए। मैं कल सोच रहा था कि ढोलक तो जोर से थाप दे करके आवाज देती है लेकिन चेतना सोई रहती। मंदिर की ढोलक मंदिर के घंटे बजते हैं लेकिन भीतर कोई संगीत नहीं बज पाता। और इसी तरह यंत्र निरंतर गतिमान है, डायनामिक है। पूरा भौतिक जगत डायनामिक है, गतिशील है, निरंतर रोज नई नई खोज लेकर के आ रहा है। इसके बाद भी हम वहीं कहीं खड़े हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। आखिर बात क्या है? हमें अब कुछ ऐसी शिक्षा पानी होगी जो हमें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ जीवन की जीवंतता और जीने की कला भी सिखाए, जो हमें जीवन की शांति का बोध कराए। शायद वो शिक्षा भी आज आवश्यक है। इन दोनों का समन्वय अगर कर दिया जाए, दोनों एक साथ खड़े हो जाएं, तकनीकी ज्ञान वाले के पास अगर जीवन को जीवंतता देने वाला ज्ञान भी हो वो भी साथ साथ सीखा जाए, और जहां से जीवंतता मिलती है और वो जीवंतता यांत्रिक होती चली जा रही है, वे भी यांत्रिक जगत से शिक्षा ले सकें कि कहीं यंत्र के साथ हम यंत्र ना हो जाएं। यंत्र को हम दिशा देने वाले पृथक हैं, यंत्र बिल्कुल पृथक है। हमारी धार्मिक क्रियाएं यांत्रिक ना हो और हमारा यंत्र जगत जीवंत रहे, उसमें भी हमारी जीवंतता बनी रहे। अगर हम ऐसा कुछ समन्वय कर पाए तो शायद हमारे जीवन की सार्थकता होगी। इसका उपाय क्या है? मैंने या हम सब ने बैठ करके ये विचार तो कर लिया कि ठीक है, आज जिनके पास तकनीकी ज्ञान है उनके जीवन में भी जीवंतता नहीं है, जिनके पास धर्म की चार बातें हैं उनके जीवन में भी जीवंतता नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका? कहीं कुछ तो फॉल्ट है। और मैं सोचता हूं वो थोड़े से बड़ा ये है कि जीवंतता तो हमें अपने भीतर ही खोजना पड़ेगा, और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह अपना जीवन जी रहे हैं। पिछले दिनों हमने इस पर बहुत विचार किया है, उसी में दो विचार दो छोटी छोटी सी घटनाओं से अपन शामिल कर लें और कहीं रख लें, काम आएंगे। एक बहुत बड़ा राजा था, उसके महल थे, बाग बगीचे थे, बहुत संपत्ति थी, बहुत भौतिक उपलब्धियां थी। और एक दिन जो है उसके महल में कहीं से धुआं आना शुरू हुआ। खोज खबर हुई, पता लगा कि बाजू में जो बाग बगीचों की रखवाली करती है वो बूढ़ी अम्मा रहती है, उसकी झोपड़ी में से ये धुआं आया है। राजा को बहुत बेचैनी हुई, ऐसे कैसे काम चलेगा, इतना एडवांस तो हम हो गए हैं और ये धुआं हमारे घर में कैसे भर सकता है? हटाओ इन झोपड़ियों को ही हटा दो, धुआं भी नहीं रहेगा और हमारी शान बनी रहेगी। और झोपड़ी को हटाने का आदेश दे दिया गया। हमने तो पता नहीं अपनी सुविधा के लिए कितनी झोपड़ियां हटाई होंगी, गिराई होंगी। हमने अपने यंत्र लगाने के लिए, हमने अपनी मल्टी बनाने के लिए
हमने अपने बड़े बड़े कारखाने चलाने के लिए कितने छोटे छोटे से लोगों को अपने मार्ग से हटा दिया होगा, ये तो शायद हम कभी अपने जीवन में शायद विचार करें। अभी तो कहानी वाला विचार अच्छा है। हटवाने के आदेश निकल गए, बुढ़िया की झोपड़ी तोड़ फोड़ के हटाई जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, एक बार उस राजा को देख तो लूं, उससे दो बातें तो कर लूं, चली तो जाऊंगी मैं। और जब राजा के सामने गई तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि महाराज, आपके बड़े बड़े बाग बगीचे और आपका ये महल, इसको मैं देख सकती हूं, आप मेरी एक छोटी सी झोपड़ी नहीं देख सकते। बस जीवंतता इसी का नाम है। जहां हम अपने भौतिक उपलब्धियों के संसार में घिरे रह करके भी प्राणी मात्र के प्रति एक सद्भाव रख पाते हैं, मानिए वो हमारा तकनीकी ज्ञान सफल हुआ है। अगर उस तकनीकी ज्ञान के साथ हमारी आत्मीयता, हमारी परस्पर एक दूसरे की और विनम्रता की दृष्टि अगर समाप्त हो गई तो वो हमारा ज्ञान अधूरा है। अधूरा कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा। उस अधूरेपन को दूर करने की कोशिश करिए। और इधर ये जो पूजा पाठ हम रचाते हैं, इधर जो हम धार्मिक क्रियाएं 24 घंटे दोहराते हैं, उसके बाद भी हमारे भीतर जो एक स्वकेंद्रित और यांत्रिक हो जाने की प्रक्रिया जारी हो गई है, होना नहीं चाहिए था। मैं दो शब्द कह रहा हूं आपसे, स्वकेंद्रित। हर धार्मिक व्यक्ति अपने एक दड़बे में घुसा हुआ है। हम सब धार्मिक हैं, मैं भी हूं, मेरा भी एक दड़बा है, मैं उसमें घुसा रहता हूं। मेरी अपनी क्रियाएं हैं, उनको दोहराता हूं, आप बुरा मत मानिएगा, मैं भी आप में शामिल हूं। जब तकनीकी वालों की बात कर रहा था तब भी मैं उसमें शामिल था, जब आपकी बात कर रहा हूं, अपने धार्मिक की बात करूं तब भी मैं अपने उसमें शामिल हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो स्वकेंद्रित हो जाना, बस अपनी ही खोज खबर, अपनी ही चिंता। तपस्या करूंगा तो अपना आत्म कल्याण होगा, तपस्या करूंगा तो प्राणी मात्र का कल्याण होगा, ये अप्रोच ही नहीं बन पा रही। मैं आज पूजा करूंगा तो मैं सबका कल्याण कर पाऊंगा, आज मैं पूजा करूं तो अपने कर्मों की निगरा कर लूंगा, ये तो रोज पूजा करने वाला विचार करता है, लेकिन इस पूजा के द्वारा मेरे आत्मा का कल्याण होने के साथ साथ पर का कल्याण भी होगा। ऐसा ना हो कि वहां से पूजा आत्म कल्याण की करके बाहर निकले और दूसरे को चोट पहुंचे। ये स्वकेंद्रित होना हमें छोड़ना पड़ेगा और यांत्रिक होना छोड़ना पड़ेगा। हमारी आंख सब तरफ घूमती रहती है और पूजा के दब चलते चले जाते हैं, घंटी बजती चली जाती है और हम जैसे एक यंत्र कंप्यूटर इन सारी क्रियाओं को दोहराता है वैसी दोहरा लेते हैं। नहीं, इसमें हमें ब्रॉडनेस लाना पड़ेगी। हमें यांत्रिक और स्वकेंद्रित नहीं हो करके बहुत विस्तृत और सबको अपने में समाने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुना दूं, उससे शायद कोई संदेश मिल जाए। हमारा अपना जीवन तो अब दूसरे को संदेश कुछ दे नहीं पा रहा है। पुराने लोग हुए जिनका जीवन हमें आज भी संदेश दे रहा है। क्या हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कोई संदेश दे के नहीं जाएंगे? ये क्यों हमने ये सब कुछ क्यों किया? क्या आवश्यकता पड़ी थी इस सब की? मेरे भीतर सिर्फ एक ही पीड़ा है, आने वाले लोग हम जितने धार्मिक हैं शायद इसमें नहीं रह जाए। या तो वे पूरी तरह यांत्रिक हो जाएंगे या कि वे धर्म को आडंबर मान करके उससे विलग हो। हम नहीं चाहते कि वे यंत्र जगत में यांत्रिक हो जाए या कि आडंबर मान करके अपने विरासत में मिले धर्म को भूल जाए। ये प्रयास सिर्फ इसलिए था कि भले ही हम 50 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन ये 50 लोग 500 लोगों के बीच से जाएंगे और 5000 के बीच जाएंगे, इस बात को कह पाएंगे कि तुम धार्मिक हो।
धार्मिकता के सच्चे मायने क्या होता है ये जानो, और तुम तकनीकी ज्ञान रखने वाले हो, एक टेक्निक वो भी है जिससे कि तुम इस तकनीकी ज्ञान से भी पार हो सकते हो, वो भी एक तकनीकी है। और एक खरगोश के पास, वो तो जंगल की कहानी है,
नदी के किनारे सबने अपने अपने घर बना रखे थे जानवरों ने, छोटे छोटे जानवर के छोटे छोटे घर थे, सबसे बड़ा तो था हाथी, उसको बहुत ज्यादा जगह चाहिए पड़ती है हाथी को।
तो एक दिन हाथी सबसे मिलने निकला, जो जितना बड़ा होगा मानिए वो आपसे उतना झुक कर मिला होगा। मैं तो सोचता हूं कि बड़े होने की शायद यही तासीर है। और हाथी सबसे मिलने निकला, खरगोश के यहां गया सबसे पहले, छोटे से खरगोश ने कहा कि आओ मामा। और छोटा सा था उस खरगोश का आसन, बिछा दिया बैठो, अब कैसे बैठ सकता हाथी। आगे बढ़ा, लोमड़ी मिली, उसने भी पुकारा कि अरे आप आए, पर उसका भी आसन छोटा पड़ गया, हाथी दादा वहां भी नहीं बैठ पाए। हरिण के पास गया, पर उतने से आसन से कैसे काम बनेगा, एक पैर दो पैर ही रख पाए उतने में ही सारा आसन हो गया। अब क्या करें, रीछ तो बहुत बड़ा था, उसके पास बहुत बड़ा आसन था, लेकिन जहां रीछ रहता था वहां पर जगह छोटी थी, आसन बड़ा था पर जगह छोटी थी, तब भी हाथी नहीं बिठाल पाए। अगर हाथी को बिठालते, उनसे दो बातें सुनते तो कुछ जीवन के लिए संदेश मिलता। सब मुश्किल में थे, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आए हैं हाथी दादा तो सबका मन है कि बिठा लें, लेकिन क्या करें, किसी के यहाँ जगह कमती है, किसी के यहाँ पर आसन छोटा पड़ रहा है, लेकिन किसी के दिमाग में ये चीज नहीं आ रही थी, कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा था। हमारे भी तो छोटे छोटे सबके आसन हैं, और इतना बड़ा है भगवान, और इतना सारा है इस सृष्टि का ज्ञान, अपने जीवन का ही ज्ञान, वो नहीं समाता, समा ही नहीं सकता। कोयल बैठी थी, बहुत प्यारा गाती थी, उसने सबसे गा करके कहा कि अरे तुम सब ये चाहते हो कि हाथी दादा हमारे घर के सामने बैठे, जरा आगे बढ़ो, नदी के किनारे इतनी जगह है, उठाओ अपने अपने आसन और बिठाओ नदी के किनारे सब, और बिठा लो हाथी दादा को और घेर के बैठ जाओ, फिर सीखो उनसे बातें, कितनी सीखी। मेरे ख्याल से अब हमें शायद यही करना पड़ेगा, हमें अपने छोटे छोटे से दायरे से निकल करके, हमें अपने आत्म कल्याण और स्व केंद्रित होने के दायरे से निकल करके कि मैं बहुत बड़ा हूं, इस विचार को छोड़ करके एक ऐसी जगह जहां सब बैठ सकें, अपने अपने छोटे छोटे से ज्ञान को लेकर के हम वहां बैठें। ये सब इसी के लिए किया गया, सब अपने अपने में बड़े हैं भैया, और कोई किसी से कमती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे भीतर सबके भीतर एक कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं और एक ऐसी जगह अपनी विख्यात लगाते हैं जहां सब एक साथ बैठ सकें। आज मेरे ख्याल से हम सबको यही सीख लेना है कि हम सबका ध्यान रख सकें, हमारे आसपास जो घटित हो रहा है उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं ये कर सकें। और दूसरी बात, कोई अगर हमारे यहाँ आता है तो हम उसे जगह दे सकें, एक ऐसा स्पेस दे सकें जहाँ की वो भी बैठ करके अपनी बात कर सके। जिन जिन लोगों ने इसमें प्रयास किया है, वे चाहे समोचरण ग्रुप के हों, वे चाहे सावक संघ के हों, वे चाहे छत्रपति नगर के हों, वे अपने अपने दरवे से निकल करके और इस विशाल उसमें आए हैं, ये सुखद है। आज यही हुआ है
हर व्यक्ति के अपने छोटे छोटे से दायरे हैं और उनसे वो बाहर निकल के एक साथ कोई भी चीज नहीं कर पा रहा। क्या हम आशा रखें आने वाले दिनों में कि हम अपने छोटे बच्चे देख रहा हूँ कितनी दूर दूर से, शायद रामचंद नगर और गांधीनगर से 20 किलोमीटर, जबकि हमारे वहाँ तो बुंदेलखंड में अगर बंदा से दलपतपुर जाना हो तो 10 किलोमीटर है, तो दलपतवर वाले नहीं आते, चले बंदा बहुत दूर है 10 किलोमीटर, वो दूसरा गांव है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने सीखा है कि किसी भी एक जगह, जहां जगह है वहां हम अपनी अपनी बिछात लेकर के और बिछा करके आराम से और सुनने के लिए और जीवन के विकास के लिए
तत्पर हुए हैं। और आज तो हमने अपनी वो विसात बिछात और बड़ी कर ली है जिसमें कि सब जगह से दूर दूर से भी लोग आकर के और उसमें बैठ गए हैं। मैं सोचता हूँ कुछ थोड़ी सी हमारी यांत्रिकता कम हुई होगी, कुछ थोड़ी सी जीवंतता हमारे जीवन में इसी से आई होगी। ये हमारी जीवंतता अगर आगे भी ऐसी ही कायम रहे विद्वानों के लिए मैं क्या कहूं, इतना ही कहता हूं कि विद्वान हमारे हैं और विद्वान मुझे अपना माने, उनको कोई अगर कमी रही हो तो वो मेरे लिए क्षमा करे।
मैं आप सबके बीच अपने को बहुत बड़ा नहीं मानता हूं, मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि मैं आचार्य श्री के चरणों की धूल हूं और आप सब भी आचार्य श्री के भक्त हैं, तो आप भी मेरे सहधर्मी हैं और हम सब इनके पूर्व आचार्यों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। कोई थोड़ा सा आगे है, कोई थोड़ा सा पीछे है, पर मैं आप सब के साथ हूं। आए और अपन सब उस भगवान के बताए हुए रास्ते पर अपने छोटे छोटे से ज्ञान से और वहां तक पहुंचने की कोशिश करें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हम सब का जीवन ऐसे ही सार्थक होता रहे, हमें अपने जीवन में ये पवित्र क्षण मिलते रहे, ऐसी भावना के साथ मेरे साथ आज आप सब मिलकर के नमोकार करेंगे, इस भावना से कि हमारा हृदय बहुत विशाल हो, सब उसमें आ सकें और हम भी इतने छोटे से हो जाएं कि सबके हृदय में छोटी थोड़ी थोड़ी सी जगह हमें भी मिल सके, ऐसी भावना के साथ आज नमोकार करेंगे।
Thank you.